أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد سورة بقرة آية نمبر 218، إن الذين آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونے کا حقدار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں وہ اہل ایمان کے ساتھ تین قسم کی صفات وہ مومنین کے لیے بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی صفت وہ ایمان ہے، دوسری صفت ہجرت ہے، اور تیسری صفت جہاد ہے۔ کہ ایمان، ہجرت اور جہاد کرنے والے لوگ، ایمان، ہجرت اور جہاد کرنے والا گروہ، کہ اللہ کے ہاں رحمت کا امیدوار ہے، اللہ کے لطف کا امیدوار ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں ہجرت کو ایک اہل ایمان کی پسندیدہ ترین صفت قرار دیا گیا ہے، کہ ہجرت بعض حالات میں واجب ہے اور بعض حالات میں کہ وہ مستضعف مرد یا عورتیں یا بچے کہ جن کے لیے کوئی اور راہ نہ ہو، ان پر بھی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ ہجرت نہ کر سکیں، استطاعت نہ رکھتے ہوں، کوئی ہیلا نہ ہو سکے، تو کوئی راہ نہ پائیں، تو پھر ان کے لیے وہ واجب نہیں ہے، وگرنہ مردوں پہ، عورتوں پہ اور بچوں پہ بھی ہجرت کے اپنے شرائط کے ساتھ وہ واجب ہو جاتی ہے، خصوصی طور پہ کہ جہاں پہ گناہ ہو رہے ہوں، اور گناہ کرنے پہ انسان یا ان میں شرکت کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، و نہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا بالکل ختم ہو چکا ہو، یا اس کا کرنا اس میں موانع ہوں کہ جس کی وجہ سے ادا نہ کیا جا سکے، تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہاں پہ زمین کے جس حصے میں اللہ کے گناہ ہو رہے ہوں، وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے قیام کا سب سے پہلا واقعہ وہ مدینہ سے مکہ کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ہجرت ہے، کہ جو کہ سب انسانوں کے لیے، سب حریت پسند انسانوں کے لیے اسوہ عمل کے طور پہ تا قیامت باقی رہے گی۔ کہ ہجرت کی فضیلت میں بہت سی آیات آئی ہیں، اور بہت سے انبیاء اور نیک ہستیوں نے ہجرت کی ہے، جن کی مثالیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ مثلاً حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی ہجرت، مثلاً قرآن میں اصحاب کہف کی ہجرت، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کہ اپنی قوم کو فرعونیوں سے لے کے نکل گئے، یا خود جب انہوں نے پہلی بار وہ ہجرت کی، یا اسی طرح کہ قرآن میں دیگر مواقع پہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت، کہ اسی طرح بہت سے مومنین کی ہجرت کہ مسلمانوں کی، کہ وہ مدینہ جانے سے پہلے کہ کفار کے مشرکین مکہ کے ظلم کی وجہ سے वो हबशा की तरफ हिजरत और फिर मदीना की तरफ हिजरत के ये तमाम हिजरतें हैं जो कि मिसाल के तौर पे कुरान में बयान की गई हैं। और कुरान जो है वो इस बात को भी बयान करता है कि जो लोग ऐसी जगह के फंस जाएं कि जहाँ पे वो अपने ईमान व अकायद और आमाल की हिफाजत ना कर सकें और वो इसी हालत में मर जाएं, तो उनसे फरिश्ते सवाल करेंगे कि तुमने हिजरत क्यों नहीं की, तो वो कहेंगे कि हम फंस गए थे, तो वो जवाब में दोबारा सवाल करेंगे कि क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी कि जिसकी तरफ तुम हिजरत कर जाते। इन्नल्लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइका ज़ालिमी अनफुसहुम, कि वो लोग जिनको मलाइका जब रूह कब्ज़ करेंगे इस हालत में कि वो अपने नफ्सों पे ज़ुल्म कर रहे होंगे, तो कालू कहेंगे फ़ीमा कुंतुम, कि तुम लोग कहाँ थे, तो कहेंगे कालू कुन्ना मुस्तज़फ़ीना फ़ी फ़िल्लास, तो वो लोग कहेंगे कि हम ज़मीन में कमज़ोर कर दिए गए थे। कालू तो फरिश्ते कहेंगे अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह वासिया, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, फतुहाजिरु फ़ीहा, कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। फ़ौलाए का मावाहुम जहन्नम, अब जबकि तुमने हिजरत नहीं की तुम्हारी ठिकाना तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। वसात मसीरा, और वो कितना बुरा ठिकाना है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 97 है। इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजाल, सिवाय वो कमज़ोर लोग मर्दों में से, वन निसा वल विल्दान, के औरतों में से या बच्चों में से, ला यस्ततीउन हीलतन, जिनके लिए कोई हीला ना हो सके, वला यहतदून सबीला, और कोई राह ना निकल सके, कि वो इतने कमज़ोरों के हिजरत की भी इस्तेआत ना रखते हों, तो उन लोगों से हिजरत जो है वो माफ़ है। जैसा कि करबला की तरफ हिजरत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिजरत में, हज़रत अब्दुल्ला के जो कि मर्दों में से थे और बीमार थे, कि उनकी मिसाल है, या इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा के जो कि औरतों में से थीं और ज़ईफ़ा थीं, तो उनकी मिसाल है कि उन्होंने हिजरत नहीं की क्योंकि वो मुस्तज़फ़ीन में से थे। या हज़रत सोरा के जो कि उम्र में छोटी थीं और उन्होंने वो हिजरत नहीं की। तो इस तरह हिजरत के बारे में बेशुमार आयात में अल्लाह ने अपने अहकाम बयान किए हैं। जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 20 में इरशाद होता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह बे अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, कि वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया अपने अम्वाल से और अपनी जानों से, आज़मु दरजता इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक उनका अजीम दर्जा है। व उलाए का हुमुल फायजून, और यही लोग वो फायज होने वाले हैं। और इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 122 में है कि व कानल मोमिनूना लियनफिरू कफ्फा, कि वो लोग जो इल्म दीन हासिल करने के लिए हिजरत करते हैं, तो उनकी उनके मदा में उनके बारे में आयत है कि वो अब इल्म दीन हासिल करने के लिए भी हिजरत करना वाजिब हो जाता है, वाजिब किफाई हो जाता है, कि वो लोग इस तरह इल्म दीन हासिल करने के लिए हिजरत करते हैं। और इसी तरह सूरह अनफाल की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला का इरशाद है वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह है, कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वल्लज़ीना अव्वा व नासरू, और वो लोग जिन्होंने उनकी मदद की और उनका साथ दिया, उलाएका हुमुल मोमिनून हक्का, تو وہ حقیقی معنوں میں مومنین وہی ہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، ورزق کریم، اور اللہ کی طرف سے رزق کریم کا وعدہ ہے. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جو کہ ظلم کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، ہم انہیں اس دنیا میں بھی نیکی عطا کریں گے، والاجر الآخرۃ اکبر، اور ان کے لیے آخرت کا درجہ وہ بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر کاش تم اسے جانتے ہوتے، اگر تم اسے جانتے ہوتے، ادراک کر سکتے. اس لیے ہمیں امام حسین اور ان کی ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے مقام کی عظمت کی معرفت بھی حاصل کرنا چاہیے کہ انہیں اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے، کہ اس دنیا میں بھی کہ وہ اعظم درجہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی ان کی نیک نامی قائم رکھی ہے، اور آخرت میں بھی ان کا جو ہے وہ عظیم اجر، ایک اکبر اجر رکھا ہے، ایک بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. یہ شہید زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے. اور یہ وہ گروہ تھا کہ جن کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 آتی ہے کہ وَقَعِيَمْ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَسِيرٍ، کہ اس قسم کے مبارزے اور مجاہدے کی مثال کہ وہ اللہ کی راہ میں پہلے سے انبیاء نے وہ قائم کی تھی، کہ نبی کے ساتھ بہت سے مجاہدوں نے مل کے وہ اللہ کی راہ میں قتال کیا. فما واہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور چونکہ اللہ کی راہ میں یہ جہاد تھا، اس لیے انہوں نے کچھ کمزوری نہ دکھائی، کہ انہوں نے کچھ عقیدتی کمزوری یا اپنے ثبات قدم میں کوئی کمزوری نہ دکھائی. وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ ضعیف ہوئے. وما استکانوا، اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹے، نہ ہی وہ خوفزدہ ہوئے، نہ ہی وہ اس بات سے، اس ثبات قدم سے ان کے قدم ڈگمگائے. واللہ یحب الصابرین، اور چونکہ انہوں نے اس راہ میں صبر کیا تو اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس طرح امام حسین علیہ السلام کی ہجرت پہ کہ یہ وہ نقلی دلائل تھے، کہ یہ وہ آیات قرآنی تھیں، اس طرح بہت سی آیات قرآنی وہ امام حسین علیہ السلام کے جہاد سے مربوط ہو جاتی ہیں. لیکن ہجرت سے یہ چند ایک آیات قرآن کی مثال دی گئی ہے، کہ جو کہ ان کی ہجرت کے ساتھ وہ رابطہ پاتی ہیں، کہ اس رابطے میں آتی ہیں، کہ جس سے اس ہستی کی معرفت ہوتی ہے، کہ وہ ہستی جو کہ مدینے کو، جو کہ قبر رسول کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جو کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کو، عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے، اور راہ کربلا کی طرف وہ قافلہ گامزن ہوا ہے، کہ اس سفر کا آغاز کیا ہے، کہ وہ سفر جو ان کی شہادت پہ منتج ہوا، وہ مبارزہ وہ کس عنوان سے جاری ہے، اور اس شخصیت کا کیا ہدف تھا، اور اس شخصیت کی کیا پہچان تھی کہ جو اس کے معاشرے میں اس وقت نہ ہو سکی، کہ جس کی وجہ سے کہ یہ واقعہ کربلا، یہ شہادت عظمی کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور لوگوں کا اس زمانے میں کیا فریضہ تھا جو وہ معاشرہ ادا کرنے سے قاصر رہا، کہ جس کی وجہ سے کہ حریت انسانیت کو قتل کر دیا گیا، उसकी शहादत कर दी गई और तमाम हुर्रियत की हकूक़ इंसानी की तहरीकें कि उससे अपनी इंस्पायरेशन लेती हैं, कि उससे अपना जज्बा लेती हैं, तो आखिर वो क्या हस्ती थी, उसका क्या मकाम था कि जो मदीना को छोड़ के वो मक्का और फिर मक्का से हिजरत करके वो करबला की तरफ वो गामजन हुई, तो वो क्या वाक़यात थे। तो वाक़यात का तसलसल इस तरह बनता है कि 15 रजब को यजीद के वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए और उसके बाद यजीद ने अपनी खिलाफत का, अपने अमीरुल मोमिनीन होने का और अपने आप को खलीफतुल्लाह कहने का मौका अपने हाथ में ले लिया और मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा जो कि उसके चचा के बेटे भी थे और ख़ानदान बनी उमैया से थे, उसको ये ख़त लिखा कि इन शख्सियतों से एक खसूसी तौर पे बुला के वो बैत ली जाए और इसमें बहुत सख्ती की जाए और उन्हें ज़रा भी रुखसत ना दी जाए और हुसैन इब्ने अली अगर इनकार करें तो उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। कि यजीद का ये नामा जब वलीद बिन उतबा के पास मदीना में पहुंचा, जो कि वाली मदीना था, मदीना का गवर्नर था, तो यजीद ने उस नामे के शुरू में कि ये नामा यजीद अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आ रहा है, कि गोया यजीद ने मुसलमानों के मोमिनीन के अमीर होने का भी दावा किया था, हालांकि उसका फिस्क व फजूर कि उसके गुनाह एलानिया होते थे, कि एलानिया वो शराब पीता था, एलानिया गुनाह करता था, एलानिया उसके वो जराइम जो थे वो तमाम लोगों में मशहूर थे, लेकिन उसके बावजूद कि उसने अमीरुल मोमिनीन होने का दावा वो किया और ये नामा जब वलीद बिन उतबा के पास पहुंचा, तो उसने वो अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान और हज़रत इमाम हुसैन को कि वो बुला लिया बैत के लिए कि वो लोग आके वो यहाँ पे गवर्नर हाउस में इस दारुल अमारा में आए और आके गवर्नर मदीना की बात सुने और उसकी बात तस्लीम कर लें। तो जो अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान थे कि वो तो रात की तारीकी में वो मदीना छोड़ के वो भाग गए और उनके पीछे वो वाली मदीना के फौजी उनको पकड़ने के लिए गए, लेकिन वो उनके हत्थे ना चढ़े और वो मदीना छोड़ के फरार हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो फरार होने को अपनी शान के लायक ना समझा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो वलीद के पास तशरीफ़ ले गए और बनी हाशिम के नौजवान भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे, तो वहाँ पे वलीद ने यजीद का ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया और बैत का मुतालबा किया और यजीद के साथ मरवान बिन हुकम भी बैठा था कि जो कि बनी उमैया में से ही था और यजीद के हुक्म की पे अमल पैरा करवाने के लिए वो इस बात की ज़मानत चाहता था कि ये बैत का मामला कि यहीं पे ही मुकम्मल हो जाए और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम यजीद की बैत कर लें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब हालात की नाजुकी और सूरत हाल सामने रखी गई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया कि वलीद, यकीनन तुम नहीं चाहोगे कि मैं अलहदगी में वो बैत करूं और लोगों के सामने वो जाहरन तुम चाहोगे कि मैं अगर बैत करूं तो ये एलानिया हो और लोगों के सामने हो और तमाम लोगों को इस बात का पता चले, क्योंकि यजीद ये चाहता है कि मेरी खिलाफत की ये 3 लोग तस्दीक करेंगे तो तब जो है وہ عوام اس بات کو تسلیم کریں گے کہ گویا کہ عوام کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ ولید کو پتہ تھی. اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں اور تم بھی دیکھتے ہو کہ ذرا ہمیں مہلت دو کہ ایک رات کی تاکہ اگر میں بیعت کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اس صورت میں بیعت کروں کہ میری بیعت اعلانیہ ہو اور میری بیعت چھپی ہوئی نہ ہو. تو ولید اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا گفتگو ہوئی کہ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ ہم بہار الانوار جلد نمبر 44 سے یہ گفتگو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ولید کو امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا, ایہا الامیر انا اہل بیت النبوہ, کہ اے حاکم کہ میں اہل بیت نبوہ میں سے ہوں, ومادن الرسالہ اور رسالت کی کان ہے ہم رسالت کا خزینہ ہیں, ومختلف الملائکہ اور ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہے, ملائکہ کے نازل ہونے کا مقام ہے, بما فتح اللہ, اللہ نے ہماری وجہ سے کہ ہمارے وجود سے بابرکت سے کہ ہمارے نور بابرکت سے کائنات کا آغاز کیا, وہ بنا خاتم اللہ اور ہمارے ہی نور سے اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا, اس دنیا کا خاتمہ کرے گا, وہ یزید و راجل فاسق اور یزید جو ہے وہ میرے مقابلے میں کہ ایک فاسق انسان ہے, گناہگار انسان ہے, شارب الخمر شراب پیتا ہے, قاتل نفس المحرمہ کہ وہ نفوس جن کا قتل جن کی حرمت اسلام میں تسلیم کی جاتی ہے ان کو قتل کرنے والا ہے, مولن بالفسق کہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے, وہ مثلی تو اس بنا پر میرے جیسا, لا یبایعو مثلہ کہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, کہ یہ اصول نہیں ہے کہ میرے جیسا انسان کہ یزید جیسے انسان کی بیعت کرے, ولکن نصب ہو لیکن ہم بھی صبح تک سوچتے ہیں, ونصبہون اور تم بھی صبح تک سوچو, وننظرو اور ہم بھی اس بارے میں وہ سوچ بچار کرتے ہیں, وننظرون وتنظرون اور تم لوگ بھی اس بارے میں سوچ بچار کرو, ولکن ایونا احق بالبیع کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون بیعت کا زیادہ حقدار ہے, والخلافت اور خلافت کا کون زیادہ حقدار ہے, ثم خرج علیہ السلام اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وہاں سے وہ واپس آ گئے. تو وہاں پہ جب یہ باتیں ہوئیں تو مروان بن حکم نے وہ یزید کو وہ حکم دیا, اس بات کا یہ مشورہ دیا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کو اس وقت جانے نہ دو, اگر اس وقت یہ تمہارے پاس سے چلے گئے تو خون کے پشتوں پہ پشتے لگ جائیں گے اور یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے اور کبھی یزید کی بیعت یہ نہیں کریں گے, اس لیے ابھی ان کی گردن اڑا دو. تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بدتینتی کا اس کی بدنیتی کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے کہ اس کو اپنا اصل کہ اس کو اپنی تینت یاد دلا دی اور کہا کہ یبن زرقہ, اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے, یعنی اے بدکار عورت کے بیٹے کہ اے بدکاری کی پیداوار, کیا تو میرے قتل میں ملوث ہوگا, کیا تو مجھے شہید کر لے گا, या तेरे मशवरे से वलीद मुझे शहीद कर लेगा, ये कितना बड़ा गुनाह है और कितनी गलत बात है जो तू अपने मुंह से निकाल रहा है, और इतने अजीम गुनाह में मुबतला होना चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से वो वापस आ गए और अपने अहले बैत से वो मशवरा किया, और सारी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो कब्र रसूल पे गए और वहाँ पे इबादत खुदा में मशगूल रहे, और वहाँ पे कब्र रसूल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाके वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भी किया और कुछ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब भी किया कि वो भी बिहार और अनवार में वो अल्फाज वो महफूज हैं कि कब्र रसूल पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाके कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम हो आप पर ए अल्लाह के रसूल, अनल हुसैन बिन फातिमा, मैं हुसैन आपकी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हूँ, फरख का वबन फरख का, कि मैं आपके जिस्म का टुकड़ा हूँ और उसका बेटा हूँ कि जो कि आपके जिस्म का टुकड़ा थी, सिबतो का अल्लज़ी खलफती फी उम्मते का, मैं आपका वो बेटा हूँ जो इस वक्त इस उम्मत का हकीकी खलीफा है, फशद अलैहिम या नबी, के ए नबी गवाह रहना इन लोगों पे, इन्नहुम कद खज़लूनी, कि इन लोगों ने मेरी हतक हुरमत की, कि मेरी इज़्ज़त को पामाल किया, वज़य्यऊनी, और मुझे ये बर्बाद करने पे तुल गए हैं, वलम यहफ़ज़ूनी, और मेरी हिफाजत इन्होंने नहीं की कि जिस इज़्ज़त व करामत व शर्फ़ व मकाम व मर्तबा का मैं आपके नज़दीक हामिल था, कि इन्होंने मेरी हिफाजत करनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने नहीं की, वहादा शिकवा अलैका, और इस बात की शिकायत मैं आपसे करता हूँ, हत्ता अलका का, हत्ता के मेरी आपसे मुलाकात होगी। फिर आपने वहाँ पे नमाज अदा की, और फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक दुआ भी अल्लाह ताला के यहाँ वो वहाँ पे कब्र रसूल पे जो उन्होंने की कि वो भी बिहार और अनवार में मनकूल है, कि अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबी का मोहम्मद, या अल्लाह ये तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वाना इब्नु बिन्त नबी का, और मैं आपकी नबी की बेटी का फर्जंद हूँ, वक़त हसरनी मिनल आम्र, वक़त हसरनी मिनल आम्र मा काता अलम, और मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ या अल्लाह वो तेरे इल्म में है, अल्लाहुम्मा इन्नी हब्बुल मारूफ, या रब मैं यकीनन वो नेकी के हुक्म देने को से मोहब्बत रखता हूँ, व अनकर अल मुनकर, और बुराई से मना करने को मोहब्बत रखता हूँ, महबूब रखता हूँ, वाला सालों का या जल जलाल वल इकराम, और ए जलालत व करामत वाले खुदा अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बेहक्किल कबर, इस कबर के वास्ते से, व मनफीहा, और वो हस्ती जो इस में मदफून है, इल्ला अख्तरत ली, कि सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि मेरे लिए वो इंतखाब कर, मा होवा लका रजा रजी, कि वो चीज़ इख्तियार कर कि जिससे तू राज़ी है, वह बे रसूल का, और जिससे तेरा रसूल राज़ी है। तो कब्र रसूल पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारी रात इबादत करते रहे, हत्ता के सुबह हो गई, तो सुबह के वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आँख लगी, और ख्वाब में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई, कि ख्वाब में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और उन्होंने आके हज़रत इमाम हुसैन को कुछ इरशादात फरमाए कि जो कि ख्वाब से बेदार होने के बाद जनाब ने वो बयान किए और वो भी बिहारुल अनवार में अल्फाज महफूज हैं। हबीबी या हुसैन, ए मेरे प्यारे हुसैन, कन्नी अरा का अन करीब, कि मैं देख रहा हूँ कि तुझे अन करीब, मुरम्मिलन बेदमाए का, कि तेरा खून बहा दिया जाएगा जो कि रेत में मिल जाएगा, मजबूहन बेअर्ज कर्ब बला, कि ज़मीन कर्ब बला में तुझे ज़िबह कर दिया जाएगा, मिन असाबत मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत ये अजीम मुसीबत तुझ पे वारद करेगी, वानता मा ज़ालिका अतशान, उस हालत में कि तू प्यासा होगा, ला तस्का, तेरी प्यास नहीं बुझाई जाएगी, और तू भूखा होगा और तेरी भूख नहीं मिटाई जाएगी, और अन्ना लका फिल जनान दरजात, कि जन्नत में तेरे लिए इतने दरजात हैं, लन तनालाहा इल्ला बिशहादत, कि शहादत के बग़ैर उन दरजात का हासिल करना नामुमकिन है। तो फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके बाद अपनी वालदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पे गए और अलविदा कहा, और उसके बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र पे गए और अलविदा कहा, और फिर इसके बाद हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया जो कि पीछे रह गए थे वहाँ पे मदीना में और हिजरत में साथ शरीक नहीं हो सके थे, कि उन्हें एक वसीयत नामा लिख के दिया, कि वो वसीयत नामा के अल्फाज भी बिहारुल अनवार में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ा मा औसा बिही अल हुसैन इब्न अली बिन अबी तालिब, ये वो वसीयत है हुसैन इब्न अली बिन अबी तालिब की, इला अखी है मोहम्मद अल मारूफ़ इब्न हनफिया, कि अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के नाम, इन्नल हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, वन्ना मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुह, और मोहम्मद उसके अब्द और रसूल हैं, जाल हक मिन इंदल हक, के हक हक से आया, व इन्नल जन्नत व नार हक्कुन, और जन्नत और दोज़ख हक है, व इन्नस सात आतिया ला रैब फीहा, और क़यामत एक दिन आने वाली है उसमें कोई शक नहीं है, व इन्नल्लाह यबसु मन फिल कुबूर, और कब्रों में से सब लोगों को एक दिन अल्लाह उठाएगा, व इन्नी लम उखरज, और मैं यहाँ से हिजरत नहीं कर रहा, ना तो शर फैलाने के लिए और ना ही बड़ाई चाहने के लिए और ना ही फसाद के लिए और ना ही जुल्म के लिए, और मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ, लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, कि अपने दादा अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, उरीदो अन अम्र बिल मारूफ, मेरा इरादा इस बात से अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना है, व नहीं अनिल मुनकर और बुराई से मना करना है, और मैं ये हिजरत बसीरत जद्दी अपने नाना की सुन्नत की सीरत के मुताबिक, व अबी अली और अपने बाप अली अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक कर रहा हूँ, व मन काबल अली, कि जिसने मुझे कबूल कर लिया, मेरे हक को कबूल कर लिया, बेकबूल हक, वल्लाहु औला बिल हक, अल्लाह ताला का हक सबसे पहले है, यानी मैं अल्लाह ताला की तरफ से हक पे हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से हक के माम हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से खिलाफत का हक मेरा है, अल्लाह ताला की तरफ से इमाम होने का हक मेरा है, कि मैं इमाम मासूम हूँ इस बात को बयान कर रहे थे, वमन रद्दा अला हाजा, और जिसने इस बात को ठुकरा दिया, इस बात को जुठला दिया, असबर, तो मेरा सब्र है उस बात पर, हत्ता यकज़ा बैनी, हत्ता के अल्लाह ताला वो मेरे और इस कौम के दरमियान के हक के साथ वो फैसला कर दे। तो ये जो था मकतूब था, वह खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन हुक्म करने वाला है। वहादा वसीयती या अखी इलैका वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु व इलैहि उनीब। और ये वसीयत थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के नाम। और कहते हैं कि वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और तौफीक सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, किसी और की तरफ से नहीं होती। अलैहि तवक्कलतु, मैं अल्लाह ही पे भरोसा करता हूँ। वह अलैहि उनीब, और अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे होता हूँ। कि फिर इस वसीयत पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहर लगाई और मोहम्मद बिन इब्न हनफिया के सपोर्ट किया। और फिर मदीना से वो इसी रात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 28 रजब की रात को हिजरत कर गए। तो ये शख्सियत कौन थी कि ये हमने आयात कुरानी की रोशनी में भी देखा और इसको दलायल अकली की रोशनी में भी देखते हैं। कि दलायल अकली इस पे कि इमामत के बाब में, कि तजरीदुल एतिकाद में शेख नसीरुद्दीन तूसी ने और उसकी शरह कशफुल मुराद में अल्लामा हिल्ली ने बयान किए हैं कि उनके मुताबिक जो पहला असूल था कि इमाम वो अल्लाह की तरफ से मंसूब होता है, ये अल्लाह के लुत्फ का मुजाहरा है, अल्लाह की रहमत का मुजाहरा है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 218 में हमने देखा है कि उलाइका यरजून रहमतल्लाह, के वो लोग जो लोग ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, तो वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, यानी अल्लाह के लुत्फ के उम्मीदवार हैं। और अल्लाह के कायदे लुत्फ का तकाजा ये है कि इमाम का नस्ब होना वाजिब है, कि अल्लाह ने अपनी ज़ात पे भी उसको वाजिब किया है। जैसा कि हम शहादत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मजलिस में ये कायदे लुत्फ तफसील से बयान कर चुके हैं। तो इसका दूसरा जो हिस्सा है वो ये कहता है कि ये हस्ती मासूम है, कि इस्मत इमाम पे अकली दलायल भी मौजूद हैं और कुरान व अहदीस के दलायल भी मौजूद हैं। कुरान व अहदीस के दलायल के बाद हम इस हस्ती की इस्मत पे अकली दलायल की तरफ आते हैं। उसका पहली दलील ये है कि अगर इमाम को मासूम ना माना जाए, अगर इस हस्ती को मासूम अनिल खता, खताओं से पाक ना माना जाए, तो तसलसल वाजिब आता है। और तसलसल चूँकि बातिल है, तो इसलिए दलील तसलसल जो है वो इसकी इस्मत का तकाजा करती है। कि अगर कि किसी शख्स को इमाम इसलिए नसब किया जा रहा है कि वो अल्लाह की तरफ से इस मनसब का अहल है, तो अहलियत का तकाजा उसका गुनाहों से पाक होना है। कि अगर वो गुनाहों से पाक नहीं होगा, तो वो किसी और इमाम को वो फॉलो कर रहा होगा, तो उसे किसी और इमाम या राहबर की ज़रूरत होगी कि जो गुनाहों से पाक हो। तो वो फिर असली इमाम वो नहीं होगा, वो दूसरा होगा जिससे वो मशवरा कर रहा होगा, या जिसके मशवरे की उसे ज़रूरत होगी, या जिसके मशवरे के बग़ैर कि गुनाहों से पाक फ़ैसला मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर अगर वो भी जो है वो इस्मत से वो नहीं होगा, इस्मत से मुतसिफ नहीं होगा, तो फिर उससे अगला जो है वो ज़रूरी है कि वो इस्मतों के, हत्ता के ये सिलसिला आखिर पे उस इमाम पे जाके मुंताज होगा, ख़त्म होगा, कि जो मासूम हो, मासूम के बगैर कि ये मनसब इमामत कि किसी और को नहीं हो सकता। इसलिए तसलसल लाजिम आ जाता है कि اگر یہ ہستی معصوم نہ ہو تو یزید میں یہی نقص تھا کہ وہ گناہوں کو اعلانیہ کرنے والا تھا، معصیت سے معصیت پہ اعلانیہ عمل کرنے والا تھا، محارم کا اعلانیہ ارتکاب کرنے والا تھا، اس لیے رہبری کا منصب کہ امت المسلمین کی رہبری کا منصب، امیر المومنین ہونے کا منصب، خلیفۃ اللہ اللہ کا خلیفہ ہونے کا منصب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مرتبہ کعبہ قوسین پہ فائز نبی کے خلیفہ ہونے کا منصب، اس کے امام ہونے کا منصب اسے نہیں مل سکتا تھا، اس کا وہ مستحق نہیں تھا، ورنہ تسلسل لازم آتا ہے۔ اور دوسری دلیل عقلی جو اس بات پہ قائم ہے کہ وہ امام کا حافظ شرع ہونا ہے، کہ شریعت کے لیے ایک محافظ کی ضرورت ہے، کہ اگر کوئی حاکم ایسا آ جائے وہ جو شریعت کو حفظ کی حفاظت کرنے کی بجائے شریعت الہیہ کا مذاق اڑاتا ہو تو وہ حاکم وقت تو ہو سکتا ہے لیکن وہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا، کہ وہ مومنوں کا امیر، مومنوں کا سردار نہیں ہو سکتا۔ مومنوں کا سردار وہ حافظ شرع اس کا ہونا، شریعت کی حفاظت کرنے والا اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دوسری دلیل عقلی ہے کہ جو اس بات پہ وہ قائم ہے۔ اور تیسری دلیل عقلی کہ وہ وقوع خطا کا مطلب ہے کہ اگر وہ شخص خطا کرے گا، اگر وہ شخص غلطیاں کرے گا تو اس سے کا انکار پھر واجب ہو جائے گا، کہ جب پتہ ہوگا کہ یہ بات غلط ہے اور امیر المومنین کا دعویٰ کرنے والا شخص وہ غلطی کر رہا ہے، مثلا شراب پینا غلط ہے اسلام میں، اور اگر کوئی شخص اعلانیہ شراب پیتا ہے تو اس غلطی کا انکار کرنا وہ واجب ہو جائے گا، اور جب انکار کرنا واجب ہو جائے گا تو پھر اس کی اطاعت سے یہ تضاد رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت ممکن نہیں ہوگی، کہ یہ بات مثلا یہ جو آیت آتی ہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی اطاعت کرو، وأولی الامر اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو، تو یہ بات پھر وہ شخص جو خطائیں کر رہا ہوگا، جو گناہ کر رہا ہوگا، اس پہ یہ اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے یزید کے لیے یہ منصب ثابت نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ منصب ثابت ہو سکتا ہے، عقلاً ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جو شخص جو ہے تیسری چوتھی دلیل یہ ہے کہ جو شخص معصیت یا گناہ کر رہا ہوگا تو نقض الغرض جو ہے کہ جو امام کے منصوب ہونے کی، امام کے منصب کی جو غرض ہے، جو مقصد ہے، کہ وہ فوت ہو جائے گا، وہ مقصد ٹوٹ جائے گا، کہ وہ مقصد جو ہے پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ شخص معصیت کر رہا ہے اور جب خود گناہ کر رہا ہوگا تو وہ دوسروں کو کیسے گناہ سے وہ روکے گا، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خود گناہ کر رہا ہو، خود شراب پی رہا ہو اور باقی معاشرے میں وہ اسلامی تعلیمات کے نفوذ کا کہ نافذ کرنے کا وہ سبب بنے، کہ اگر وہ خود کر رہا ہوگا تو وہ باقی امت کی قیادت کے لیے بھی وہ مناسب نہیں ہے، کہ اس کو قیادت کا حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ کے جو عوامر ہیں کہ ان کی امتثال وہ نہیں کر سکے گا، کہ وہ اللہ کے عوامر کی مخالفت کرے گا، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرے گا۔ صرف یہ منصب اس شخص کو پہنچ سکتا ہے جو کہ اللہ کے حکموں کی وہ امتثال کرے، کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی اور یزید اس سے نقطۂ مقابل میں سے تھا، تو یزید کے لیے یہ منصب منفی ہو جاتا ہے، کہ اس کے منافع ہے، یہ اس منصب کی شان کے خلاف ہے کہ خطا کار یا معصیت کار اس منصب پہ آ جائے۔ اور پانچویں دلیل ہے وہ یہ تھی کہ معصیت کرنے کی وجہ سے پھر وہ رہبری کے تو مقام پہ نہیں آ سکتا، بلکہ عوام میں سے بھی اقل درجے پہ آ جاتا ہے، کہ عوام میں سے بھی کیونکہ وہ بری صفتیں اس کے اندر آ گئی ہیں تو اچھے عوام میں بھی وہ شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ عوام میں بھی جو لوگ برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں تو انا अकरामकुम इंदल्लाह अतकाकुम, कि अवाम का भी असूल लिया इस्लाम के अंदर कि तुम में से इज़्ज़त का ज़्यादा इज़्ज़त का हकदार वो है जो कि तकवा में सबसे ज़्यादा हो। तो मासीयत की बुनियाद पे कि अवाम में भी उसका दर्जा गिर जाएगा और वो अकल हो जाएगा। और इसकी दूसरी दलील यह कि उसका जो क़्यादत पे जो शख्स वो फायज होता है, उसके काबिल होता है, तो उसका अकल भी अशद होना चाहिए, अकल भी मजबूत होना चाहिए, उसकी मार्फत अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला के सवाब व इकाब के बारे में भी उसकी मार्फत अक्सर होनी चाहिए कि बाकी लोगों से वो ज़्यादा होनी चाहिए। और ये मार्फत और ये अकल अशद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था, जबकि यजीद इसके मुतजाद सिफात का हामिल शख्स था और तमाम लोगों को, माशरे के लोगों को इस बात का पता था, और वो सिर्फ अपने मजालिम की बुनियाद पे वो मनसब हुकूमत पे बैठा था। और छठी जो अकली दलील इस बात पे वो कायम होती है वो ये है कि उसकी जो इस्मत है इस मकाम की, वो इसकी कुदरत के खिलाफ नहीं है, मुनाफी नहीं है। ये नहीं है कि वो शख्स जो है मासूम है तो वो मजबूरन मासूम है, यानी दर्जा शहादत भी वो उसकी कुदरत से मुनाफी नहीं है कि दर्जा शहादत चूँकि लिखा जा चुका है, या चूँकि रसूल अल्लाह सलाम ने ख़बर दी है, या चूँकि मुख्तलिफ़ रवायात में पहले आ चुका है, तो इसलिए वो जबरन शहादत है, या जबरन ये मनसब इमामत है, या जबरन ये मनसब इस्मत है, कि ये बात उसके लिए नहीं है, बल्कि उसकी कुदरत के साथ है, कि उसके फ़ज़ाइल में से एक है, कि उसके मनाकिब में से एक है कि वो गुनाह पे कुदरत रखने के बावजूद अपने नफ्स पे इतना काबू रखता है कि उसकी सलाहियतें इतनी ज़्यादा हैं कि उसकी कायदाना सलाहियतें, उसकी अकल की सलाहियतें, उसके इल्म की सलाहियतें, उसके तकवा की सलाहियतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो कुदरत रखने के बावजूद मकाम इस्मत पे वो फ़ायद है। इसीलिए कुरान की आयत में वो जैसा कि कशफुल मुराद में वो अल्लाह महली ने आयत कोट के कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम यूह इलैया, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, समझ के मेरी तरफ वही की जाती है, यानी मैं बशर होने के बावजूद मकाम इस्मत पे फायज हूँ, कि जनाब रसूल खुदा अलैहि सलाम वो ये बयान करना चाहते थे। और इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इमाम बरहक होगा, जो कि अल्लाह की तरफ से कि दीन और दुनिया का इमाम होगा, वो दीन और दुनिया की राहबरी के वो काबिल भी होगा कि वो इतना तकवा और सलाहियत और इस्मत रखता होगा, इस मकाम के वो लायक होगा कि जिस पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो फायज थे, जबकि यजीद जो है वो इस मरतबा से वो फाकिद था, कि यजीद इस मरतबा से गिरा हुआ शख्स था। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ये कहा कि इसकी मिसली ला युबाई हो मिसलू, कि मेरी तरह का इंसान कि वो यजीद की तरह के इंसान से बैत नहीं कर सकता। और इसी तरह उस वाक़े में भी कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो जिस रात वो वलीद बिन उतबा से गवर्नर मदीना से मिलके वापस आए, तो दूसरे दिन सुबह जब मरवान उनसे मिला तो मरवान ने फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीहत करने की कोशिश की कि देखें मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आपकी दीन और दुनिया की भलाई इसी में है कि आप यजीद की बैत कर लें। तो उसके जवाब में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो भी बिहार और अनवार में लिखा हुआ है। तो फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है। व अलल इस्लाम सलाम, तो इस्लाम को तो फिर खुदा हाफिज है। इज़ा कद बुलियत उम्मा बिरायन मिसल यजीद, कि अगर उम्मत इस बात पे बैत कर ले कि अगर कि जो उनका हुक्मरान हो वो यजीद जैसा हो, तो फिर इस्लाम पे सलाम है, यानी फिर इस्लाम को खैर आबाद और खुदा हाफिज करने के मुतरादिफ है। तो ये वो वजह थी कि एक तो बकाए इस्लाम का मसला था, कि दूसरा इंसानियत की भी जितनी अकदार थी कि उनको भी यजीद वो पामाल कर रहा था कि हकूक इंसान जितनी थी कि मसलन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं कि मैं अमर बिल मारूफ या नहीं अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूँ, यानी नेकी का हुक्म देने और बुराई का से मना करने के लिए वो हिजरत कर रहा हूँ कि जा रहा हूँ, तो ये तमाम इंसानियत से मुतल्लिक है ये बात। इसी तरह और मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, तो इस्लाह का लफ्ज़ जो है वो तमाम इंसानियत से मरबूत है, इंसानी खवास इंसानी जज्बों से और हकूक़ इंसानी से मरबूत है। और यजीद उस दौर में हकूक़ इंसानी को भी पामाल कर रहा था कि हकूक़ हुर्रियत इंसान के इंसानों की आज़ादी को भी पामाल कर रहा था, जैसा कि वो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन जलाली ने भी कहा है कि हिजरत मदीना इलल मक्का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो की थी, इसके तज़िया में कहती है कि जब उससे वलीद से पूछा गया, मरवान ने पूछा कि तू ने इसी वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद क्यों नहीं किया, इनको कत्ल क्यों नहीं कर दिया बैत के इंतबार पर, तो वलीद जो है वो कहता था कि देखें कि सिर्फ बैत के इंतबार पर मैं इतनी बड़ी हस्ती को वो कैसे शहीद कर सकता हूँ कि जिसके खून में अपने हाथ को रंगीन करना कि वो अल्लाह ताला के यहाँ जब मीज़ान कायम होगी तो कितना बड़ा गुनाह होगा जिसका मैं मुर्तकिब हूँगा। और दूसरी बात यह है कि आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन जलाली कहते हैं कि उसे अवाम की राय जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में थी उससे भी वो आगाह था, इसलिए सियासी तौर पर जो लीडर होते हैं जो वाली होते हैं उस शहर के, तो उस शहर के जो लोगों की राय होती है कि राय आमा के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाते, और क्योंकि मदीना के अक्सर लोगों की राय हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ के बारे में थी कि हक़ जो है वो खिलाफत का और हक़ जो है वो इमामत का हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और बैत का हक़ भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, और सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम में भी उसे मुतालबा रखा गया था कि जैसे कि माविया अपने मरने के बाद वो किसी को खिलाफत का मनसब वो सपुर्द नहीं करके जाएगा, तो इस हिसाब से यजीद का कोई हक इस बारे में नहीं बनता था कि इतने एलानिया फिस्को फजूर के बाद शारिबुल खम्र होने के बाद वो अमीरुल मोमिनीन होने का दावा करे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती जो कि मरकज़ इस्लाम थी कि उनसे बैत का मुतालबा करे कि इस बैत का कुछ मफहूम था कुछ मकाम था, यानी इसका मतलब ये बनता था कि इस्लामी अकदार बिल्कुल फौत हो चुकी हैं कि वो बिल्कुल बेहदफ और बेमकसद हैं, और उनका गोया वो क़याम ही नहीं हुआ था कि वो मेहनत जो कि 124,000 पैगम्बरों ने की थी वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती अगर वारिस मोहम्मद जो है वो यजीद जैसे शख्स की बैत कर लेता, इसलिए वो बैत यजीद से इनकार वाजिब था और मदीना से हिजरत भी वाजिब हो गई थी, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस नेकी का रास्ता अपनाया और मदीना से हिजरत करके मक्के की तरफ वो 28 रजब की रात को चले गए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।